इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा और मसीह यसू मसीह में आप सबकी सलामती हो। और खुदावन का शुक्र हो कि उसने हमको आज फिर ये मौका बख्शा कि हम यसू मसीह के नाम में उसके तख्त के सामने हाजिर हों और उसके कलाम को, जो हमारे मसीही ज़िंदगी के सफ़र में एक नक्शे की मानद है, जो हमारी रहनुमाई करता है कि खुदा की उस दी हुई तमाम हदायात को सुने, देखें, जांचें, भालें, ताकि हम उस आसमानी राह को जो खुदावन ने हम सब के लिए तैयार की है कि दूसरों को उसकी तरफ लाएं, उस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने का वसीला बने। सो हम सब चंद लम्हों के लिए खुदा के जुड़ झुकेंगे और अपने आप को खुदा का कलाम सुनने, उसे कबूल करने और अपनी ज़िंदगियों में उसे जगह देने के लिए खुदा उनकी हिकमत और बनाए मांगेंगे। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदावंदा, हर दौर में, हर हालात में, हर तरह की खुदावन मुश्किलात में असर दिखाता है। तेरा कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता, बल्कि खुदावन तेरे दिल की ख्वाहिश को पूरा करता है। आज खुदावन हम सब की ज़िंदगी में तेरे दिल की खुदा खुदा मंशा, ख्वाहिश, आरजू पूरी हो कि हम खुदावन इस किताब मुकद्दस को अपनी ज़िंदगियों में खुदा खुदा उस तौर से जगह देते रहें जैसे तू चाहता है। यीशु मसीह के नाम में हमारे तमाम मतालिया और इबादत के वक्त में हम सब के साथ हो। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आप सबको याद है कि हमने कल अपने मुखालफ के बारे में सीखा कि उसका काम क्या है, गुमराह करना, और गुमराह करने से मुराद यानी कि बने नए इंसान को फरेब देना, बहकाना, जिसमें हमने कल आदम और हवा की कहानी देखी कि आदम और हवा के उस वाकया में सांप जो कुलदस्ती जानवरों से चालाक था, यानी वो तमाम जंगली जानवरों में चालाक था, जो अबलीस उसमें समाया, उसने बोलते हुए हवा को बहकाया और हवा ने खुदा के हुक्म को, उसके कलाम को उस तौर से बयान नहीं किया जिस तौर से उसे बयान करना चाहिए था, और हवा नाकाम हुई और वो गुनाह में गिरे, और गुनाह के बायस उनके और खुदा के दरमियान जुदाई आई, जिसके नतीजा में आज तमाम बनी हुई इंसान को नजात दहिंदा की ज़रूरत है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस इसीलिए इस बात को कहती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। कहने का मतलब यही है कि आदम के गुनाह के बाद तमाम नस्ल इंसानियत के दरमियान वो बड़ा अहाता, वो बड़ा घड़ा, और जिसे कह सकते हैं वो जुदाई आई, जिसे गुनाह कहते हैं। इसलिए हम अपने मुसलसल मतालिया को जारी रखते हुए आज इबलीस के उन बनावटी और नकली कामों को, जो खुदा के वो असली कामों की नकल या जालीपन जिसे कहते हैं बनाकर इस्तेमाल करता है, खुदा के कामों की नकल करते हुए ईमानदारों को गुमराह करता है। इसलिए आज हम इन वाक़यात पर गौर करेंगे। तो मेरे साथ निकालें नए अहदनामों में से करंथियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 11वां बाप। उसका 11वां बाप हम उस वाक्य को पढ़ेंगे और 4थी आयत पर गौर करेंगे। और आज हम 3 बातों पर गौर करेंगे जिनमें अबलीस शैतान क्या करता है, ईमानदारों को बहकाता है, दुनिया को फरेब देता है। और आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि वो मसीह की खुशखबरी को बदल कर, मसीह के पैगाम को बदल कर नकली तौर पर क्या करता है, बयान करता है। इसलिए मेरे साथ निकालें दूसरा करंथियों 11 बाप, उसकी हम 1ली आयत से 4थी आयत तक पढ़ेंगे, ताकि हमें पूरा पता हो कि यहाँ पर क्या बात साकु स्वाब में हो रही है। पालूस रसूल यहाँ पर फरमाता है, काश के तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफ़ी की बर्दाश्त कर सकते। हाँ, तुम मेरी बर्दाश्त करते तो हो। मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है कि मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कवारी की मानद मसीह के पास हाजिर करूं। लेकिन मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाए जो मसीह के साथ होनी चाहिए। चौथी आयत, क्योंकि जो आता है अगर वो किसी दूसरे यीशु की मनादी करता है जिसकी हमने मनादी नहीं की, या कोई और रूह तुमको मिली है जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बजा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से आज हम सब की रहनुमाई हो, आमीन। यहाँ पर पालूस रसूल सादा तौर पर ईमानदारों को, जो क्रंथस की कलीसिया, उनको ये बात बयान करता है कि मेरी थोड़ी सी बर्दाश्त करो, और कहता है तुम बर्दाश्त करते भी हो क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए खुदा की सी गैरत है। ऐसा कह सकते हैं कि एहसास जो खुदा अपनी कौम के लिए रखता है। आप सबको याद होगा कि पुराने अहदनामों में खुदावन खुदा का ये लफ्ज़, ये नाम लिया जाता है। यहूदी लोग उसे कहते हैं खुदाए गयूर, यानी कि गैरतमंद खुदा। पालूस रसूल यहाँ पर यही बात कहता है कि तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है। इसका मतलब ये है कि जैसे खुदा पुराने अहदनामे में कहता है कि मैं गयूर खुदा हूँ, मैं अपना जलाल, अपनी शौकत, अपनी इज्जत किसी दूसरे मबूत के साथ क्या कहता है, बांटता नहीं। सादा लफ्जों में यहूदी कौम को ये कहा गया था कि मैं वाहद खुदा हूँ, तुम मेरे आगे किसी और को सजदा ना करना, किसी और को अपना खुदा ना बनाना, किसी और के पीछे ना चलना। तो गयूर खुदा का मतलब यही है कि वाहद गैरतमंद खुदा जो कहता है कि मैं अपना जलाल किसी और के साथ नहीं बांटूंगा। सो पालूस रसूल कहता है कि मुझे खुदा सी की गैरत है, और मैंने तुम सबकी निस्बत एक पैगंबर होते हुए, रसूल होते हुए, खादम होते हुए, तुम सबके लिए मेरा जो मकसद है, गोल है ज़िंदगी का, वो यही है कि तुमको मसीह के सामने ऐसी कवारी की तरह पेश करूं। बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत से नाम मिलते हैं ईमानदारों के, उनमें से एक नाम कलीसिया को क्या कहा गया है, मसीह की दुल्हन, मसीह की दुल्हन। सो पालूस यहाँ पर कहता है कि मसीह की पाक दामन, यानी के पाक बेऐब, और जिसे कह सकते हैं कि अबतरी का शिकार नहीं, अबतरी से मुराद यानी कि गुमराह नहीं, गुमराही में नहीं, बल्कि दुरुस्त इलम रखने वाली कवारी की मानद मसीह के पास हाजिर करूं। जिसके बारे में पालूस रसूल ईमानदारों को भी ये हुक्म देता है कि हर एक खावंद के लिए ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को, जैसे मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को कुर्बान किया, मसीह ने कलीसिया के लिए हर वो काम किया जो करने की ज़रूरत थी, एक खामद को भी लाजम है कि वो अपनी बीवी को खुदावन यसुम की मसीह के सामने हर रोज़ खुदा के कलाम से धोए, पाक साफ करे और उसकी तरक्की का बायस बने। इसलिए पालूस कहता है, हमने कल ये कहानी देखी थी आदम और हवा की, कि मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने हवा को बहकाया, तुमको भी बहकाए, जिस तरह हवा को उसने फरेब दिया, तुमको भी फरेब दे। पालूस रसूल की यही क्या है, ख्वाहिश है, फिक्र है, जिसे कह सकते हैं मैं डरता हूँ कि फिक्र है कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे ख्यालात भी बहक जाएं जैसे हवा के, तुम्हारी सोच भी बिगड़ जाए जैसे हवा की सोच बिगड़ी, तुम्हारा ध्यान भी खुदा के कलाम से हट जाए जैसे हवा का हट गया। इसलिए आज हम चौथी आयत पर गौर करेंगे कि इस दुनिया में रहते हुए शैतान की हिकमत अमली क्या है, यानी कि अबलीस के इस शैतानी निज़ाम तरीकाकार जिसमें वो ईमानदारों को बहकाने और गुमराह करने के लिए अपने नकली कामों को इस्तेमाल करता है। सबको याद है हवा को उसने कहा कि तू खुदा की मानद बन जाएगी, क्योंकि अबलीस की खुद ये ख्वाहिश थी कि वो खुदा ताला की मानद बनेगा, वो खुदा की नकल करना चाहता है, और अबलीस इसी काम में मसरूफ है ताकि वो क्या करे, ईमानदारों को गुमराह करे। तो शैतान के इस शैतानी निज़ाम में जिसमें वो खुदा की नकल करता है, खुदा के कामों को इस तरह बयान करता है जिस तरह के खुदा के काम हैं, ईमानदार होते हुए हमें उसकी चालाकियों से, हमें उसके हीलों से, हमें उसके दाव पेच से उसके फरेबों से वाकफ होने की ज़रूरत है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को खिदमत करने से भेजने के वक्त यही कहा था, पस सांपों की मानद होशियार, चलाक चुस्त समझदार दना बनो, और कबूतरों की मानद भोले, यानी कि ऐसे के बेजर रहो ताकि तुमको अगर कोई जर पहुंचाना चाहे तो अपने आप को महफूज रखो। सो हमें भी ईमानदार होते हुए सांपों की मानद होशियार, चलाक समझदार, ताकि कोई हमको फरेब ना दे। सांप के लिए क्या कहा गया था, कुल दस्ती जानवरों में से चलाक था। हमें रूहानी तौर पर चुस्त फुर्तीले समझदार दना बनने की जरूरत है ताकि अबलीस हमको धोखा ना दे। इसलिए शैतान के इस शैतानी निज़ाम में 9 मुख्तलिफ वो काम हैं जो खुदा करता है, उनकी वो नकल करता है, जिसमें आज हम चौथी आयत को देखेंगे, खुशखबरी के पैगाम की नकल। यीशु मसीह की खुशखबरी की वो क्या करता है, नकल करता है। चौथी आयत में क्या लिखा है जरा गौर से देखें, क्योंकि जो आता है वो कौन है, यानी कि जो कोई पैगाम लेकर आता है, यानी कि जो कोई मनादी करने आता है, अगर वो किसी दूसरे यीशु की मनादी करता है, दूसरे यीशु से मुराद यानी कि बाइबल मुकद्दस में हमें इमाल की किताब 13 बाप उसकी 6 आयत से 10 आयत में एक जादूगर का जिक्र मिलता है, एक जादूगर का जिक्र मिलता है जो क्या करता था, जिसका नाम क्या था, बर यसु, जो जादूगर था जो लोगों को बहकाता था, और उसका काम क्या था, लोगों को जादू के वसीला से गुमराह करना। वो अबलीस का पहरोकार था, और वहां पर अबलीस के इस पहरेकार को जिसे बर यसु कहा गया है, पालूस रसूल क्या करता है, झिड़कता है, दबकता है और उसे मलामत करता है कि ऐ शरीर के फर्जंद, तू अपनी चलाकियों और मकारियों से बाज नहीं आता, और वहां पर वो क्या करता है, रूह कुद्दस से भर के उसे मलामत करता है। इसलिए कोई और नाम जमीन पर नहीं बख्शा गया। जब भी बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं यीशु नासरी, खुदा का बेटा, मसीहे मौद, या यीशु मसीह खुदामदों का खुदा, या वो ही वाहद जो खुदा का बर्रा है, तो याद रखें ये खुदा यीशु मसीह की तरफ इशारा है जो सलीब पर मुआ, कमारी मरियम से पैदा हुआ, कब्र में उतारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस जमीन पर आपको बहुत सी मुख्तलिफ तालीमात मिलेंगी। दूसरे यीशु से मुराद यानी कि अबलीस के बहुत से बहरूपीये झूठे नबी हैं जो मसीह के नाम को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रंथस की कलीसिया में था। तो दूसरे यीशु से मुराद यही है कि वो मसीह जो खुदा की तरफ से नहीं भेजा गया, बल्कि हो सकता है बदरू की कुव्वत से, अबलीस से भरा हुआ है, या फिर बहरूपिया है, और इन बातों का सामना क्रंथस की कलीसियों को था। और दूसरी बात क्या करता है, पलूस रसूल, या कोई और रूह तुमको मिली हो। बाइबल मुकद्दस में हमें बार 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 इस बात के बारे में सिखाया गया है। मेरे साथ मिसाल के तौर पर इससे पहले आगे बढ़ें कि जो कोई आता है अगर वो किसी दूसरे यीशु की मनादी करता है, यानी कि मनादी करना से मुराद के पैगाम देता है, और अबलीस का पैगाम क्या है, तुम्हें यीशु की ज़रूरत नहीं, तुम अच्छे हो, तुम गुनाहगार हो, तुम गुनाहगार नहीं, इसलिए तुम्हें मसीह की ज़रूरत नहीं। अबलीस का ये सबसे बड़ा फरेब है जिसमें आज बहुत से लोग दुनिया के फरेब में आए हुए हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में कहती है कि सवाए आसमान पर और ज़मीन के नीचे कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो। तो निजात किसके वसीला से है, यीशु मसीह के वसीला से। किस तरह मिलती है, ईमान से। जिसमें आप हवाला जात देख सकते हैं, इफ्सियों 2 बाप उसकी 8 आयत और 9 आयत, फिर तीतस 3 बाप उसकी 5 आयत के निजात का काम किस तरह है। खुदावंद यीशु पर ईमान लाने से वो निजात का काम जो यीशु मसीह ने सलीब पर मुकम्मल किया। दूसरी बात, किसी और रूह की, कोई और रूह मिली हो। बाइबल मुकद्दस में इसके बारे में भी जिक्र मिलता है। इमाल 16 बाब उसकी 16वीं आयत में देखते हैं, वहां पर भी हमें एक जादूगर नजर आता है। उसके पास जो बदरू थी, वो बदरू क्या करती थी, उसके लिए रुपया पैसा कमाती थी। इसलिए बहुत सी बदरूहें हमें इस दुनिया में नजर आती हैं। करिन्थस की कलीसिया को पालूस कहता है कि क्या तुमको कोई और रूह मिली है। आज बहुत दफा ऐसी तालीम दी जाती है या सुनने में आती है कि तुम्हें अभी तक रूहुल कुदस नहीं मिला, बल्कि तुम्हें एक और रूह मिलेगा जिसके क्या कह सकते हैं कि नतीजे में ये काम होगा, वो काम होगा, तुमको अजीब सी खुशी होगी, तुम्हारी आंखें लाल हो जाएंगी, तुम जंप मारना शुरू कर दोगे, ये वो। यीशु मसीह इसके बारे में हमें सिखाते हैं, पालूस उसूल इसके बारे में हमें सिखाते हैं, पालूस के अलावा और शिगिर्द भी इस बात के बारे में सिखाते हैं कि हमें खबरदार रहने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर पहला तमोथियस 4 बाप उसकी 1 आयत देखें, जिसमें पालूस रसूल कलीसिया के ईमानदारों को आगाह करता है कि रूहों का इम्तियाज करो, रूहों को जांचो कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं। पहला तमोथियस 4 बाप उसकी 1 आयत में लिखा है, लेकिन रूह साफ फरमाता है, यानी कि पाक रूह रूहुल कुद्दस साफ फरमाता है कि आइंदा जमाने में यानी कि जिस जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं उस दौर में, और आइंदा जमाने में यानी कि ये मौजूदा वक्त, आइंदा जमाने में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शायतीन की तालीम की तरफ मतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। करिन्थस की कलीसिया को यही बात का सामना था। पालूस तभी कहता है कि तुम कहीं बरगश्ता, गुमराह या फरेब में ना आ जाओ। तो करिन्थस की कलीसिया किस बात की मुंतजर थी कि उनको क्या हो सकता है, तो कोई और रूह मिलेगा, जैसे उस कलीसिया में झूठे उस्ताद और जादूगर आकर उनको बहकाते थे और बहुत से उस झूठ में आ गए। और पालूस तभी उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें किसी और यीशु की या किसी और रूह की तालीम दी जाती है तो वो गलत है। मेरे साथ एक और हवाला देखें, पहला यूहन्ना 4 बाब। यहाँ पर भी खुदा का बंदा यूहन्ना जब कलीसिया को, ईमानदारों को इन बातों का सामना है, तो कहता है, ऐ अजीजों से मुराद यानी कि जो यीशु मसीह में प्यारे हैं, ऐ अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को अजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। बहुत से झूठे नबी और दूसरी रूहें निकल खड़ी हुई हैं जो क्या करती हैं, गुमराह करती हैं। खुदा का रूह क्या करता है, खुदा की गवाही देता है। अबलीस यीशु मसीह का इकरार नहीं करता कि वो निजात दहिंदा है। अबलीस इस बात का इकरार नहीं करता कि वो फातह है। यीशु मसीह का रूह ही सिर्फ ये कहता है कि वो खुदा है, खुदा की तरफ से है, और क्या करता है, इंसाफ की बात करता है। इसलिए तीसरी बात क्या कहता है, या दूसरी खुशखबरी मिली है जिसकी तुमने जिसकी जिस जिसको तुमने कबूल ना किया हो। बाइबल मुकद्दस में गलतियों वक्त की कमी के बायस इस बात पर हम जल्दी से गौर करेंगे। गलतियों 1 बाब मेरे साथ निकालें। पालूस रसूल ईमानदारों को बार बार ये कहता है कि एक ही खुशखबरी है, एक ही यस्सू है, एक ही रूह है, एक ही ईमान है, जिसे हम इफिसियों 4 बाब उसकी 1:7 में देखते हैं। यहाँ पर पालूस रसूल कहता है कि खुशखबरी मेरे अलावा जो खुशखबरी मैंने दी है, अगर कोई और खुशखबरी तुमको सुनाता है तो उसकी बात का यकीन ना करना। जल्दी से हम इस वाला को पढ़ेंगे। गलतियों 1 बाब उसकी 6 आयत। गलतियों की कलीसिया में इस बात का बहुत ज़्यादा क्या था, फसाद था। वो दूसरी किस्म की खुशखबरी क्या थी कि निजात ईमान से है, निजात 10 हुक्मों को मानने से है, निजात दा यकी देने से है, निजात नेक अमाल करने से है, निजात उन तमाम मूसा के दिए हुए कामों को करने से है, निजात वो उन तमाम ईदों को, तमाम उन क्या कहते हैं कि रिवाजों को मानने से है जो उस दौर में क्या करते थे ईमानदारों को सामना था। तो गलतियों की कलीसिया में पालूस कहता है 6 आयत में, मैं ताजुब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिरकर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ मायल होने लगे। किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ मायल होने लगे, क्या मसला था? इमाल की किताब में जिक्र मिलता है कि ईमानदार क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने, यहाँ तक कि पतरस भी बहक गया और उसने क्या करना शुरू कर दिया कि निजात ईमान से नहीं, निजात मसीह के काम से नहीं बल्कि शरीयत को मानने से है। तो इसलिए पालूस कहता है कि क्या इतनी जल्दी से तुम किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ मायल हो गए, चल फिरे उसकी तरफ, ध्यान कर लिया? 7वीं आयत में क्या लिखा है, मगर वो दूसरी नहीं अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। इन झूठे उस्तादों का, बदरूहों की पैरवी करने वाले लोगों का क्या मकसद था? मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना। आज भी बहुत से लोग हमें मिलेंगे जो मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ेंगे। खुशखबरी क्या है? खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर भेजा और वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, सलीब पर चढ़ गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा और जो कोई उस पर ईमान लाएगा निजात पाएगा। ये सादा सा खुशखबरी का पैगाम है जिसे आज बहुत दफा बिगाड़ा जाता है। तो पालूस कहता है कि खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। 8वीं आयत पर गौर करें, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई भी फरिश्ता, पालूस कहता है मैं या आसमान का कोई भी फरिश्ता, उसमें मिकाएल फरिश्ता हो सकता है, गैब्रियल फरिश्ता हो सकता है, लूसीफर फरिश्ता हो सकता है, उसके जितने भी गिरने वाले फरिश्ते हो सकते हैं, कोई भी फरिश्ता उस खुशखबरी के सिवाय जो हमने तुम्हें सुनाई, कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मालाउन हो। सादा लफ्जों में, अगर आसमान का कोई फरिश्ता, कोई भी, अगर मैं भी इस खुशखबरी को बदलने की कोशिश करूं तो वो क्या है? मालाउन है। मालाउन का मतलब, ऐसी जबान का लफ्ज इस्तेमाल किया है सख्ती के साथ, लानती हो, उस पर लानत हो, उस पर खुदा का कहर हो जो मसीह के पैगाम को बदले। तो कुरिन्थस की कलीसिया को अबलीस के पैरोकार, जो झूठे नकली बनावटी फादम थे, जो अबलीस के मानने वाले थे, वो क्या कर रहे थे? खुशखबरी के पैगाम की नकल कर रहे थे कि निजात ईमान से नहीं, ईमाल से है, निजात यीशु मसीह पर उसके निजात के काम को कबूल करने से नहीं बल्कि शरीयत को मानने से है। बहुत दफ़ा ऐसी ऐसी तालीम है, आपको हैरान कुन सच्चाइयों को जानने का मौका मिलेगा। ऐसे फलॉसफर, ऐसे यूनानी, अबरानी और दूसरे क्या कहते हैं कि उस्ताद थे जो कि यीशु मसीह की खुशखबरी को बदलना चाहते थे। इसलिए आज हमने पहले काम के बारे में सीखा जिसकी नकल क्या करता है? अबलीस करता है, यानी मसीह के पैगाम को बदलना चाहता है। इसलिए इस बात पर हम खत्म करेंगे। सब मेरे साथ इस आयत को कहें, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जबूर 119 उसकी 11 आयत। इसे याद करें, इसे पढ़ें। आए हम खुदा के हुजूर झुकें। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरा कलाम हम सब के दिलों में है। तेरा कलाम हमें पेश खुदाम खुदा पेश पेश खुदाम खुदा हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। हम सब की रहनुमाई कर ताकि इबलीस के इन झूठों और फरेबों में ना आए बल्कि खुशखबरी को खुशखबरी के पैगाम के तौर पर बयान करें, और जो कोई तेरे पैगाम को बदलता है इस बात से वाकिफ रहें कि वो तेरी तरफ से नहीं बल्कि इबलीस की तरफ से हैं। यीशु मसीह के नाम में आई हुई तमाम बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। यीशु के नाम में, आमीन।